लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे उन सब माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने पुत्र अथवा पुत्री को खो दिया है, ताकि वे सब अपने अपने समुदायों से समर्थन प्राप्त करें तथा पवित्र आत्मा से शांति और सांत्वना का वरदान पाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार 26 नवंबर को इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम की घोषणा का स्वागत किया है। यूएन महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने संबंध पक्षों से इस समझौते के तहत की गई अपनी सभी प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह से सम्मान करने और उन्हें तेजी से लागू करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि लेबनान युद्ध विराम समझौता पिछले कुछ महीनों से जारी क्षेत्रीय संघर्ष के अंधकार के बीच शांति के लिए उम्मीद की पहली किरण बनकर आया है। यह बेहद महत्वपूर्ण क्षण है, खासतौर पर उन नागरिकों के लिए जो इस लंबे खींच रहे संघर्ष और उसमें वृद्धि के चिंताजनक आयामों की विशाल कीमत चुका रहे हैं। उन्होंने पक्षों से सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 पर पूरी तरह से अमल किए जाने की दिशा में तत्काल कदम उठाने का भी आग्रह किया। बयान में कहा गया कि लेबनान के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष समन्वयक और लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल दोनों ही अपने अपने शासनादेश के अनुरूप इस समझौते के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। लेबनान में हाल के युद्ध से विस्थापित हुए लोग इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान युद्ध विराम समझौता बुधवार सुबह लागू होने के साथ ही अपने घरों को लौटने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता कर्मी युद्ध से उजड़े इन समुदायों को उनके अपने घरों को वापस लौटने पर सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उधर अजरबैजान की राजधानी बाकू में 11 से 22 नवंबर तक यूएन का वार्षिक जलवायु सम्मेलन COP29 संपन्न हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने वार्ता में जुटे प्रतिनिधियों व विश्व नेताओं से कहा कि उन्हें अपने मतभेदों असहमतियों से उबरने और एक ऐतिहासिक जलवायु वित्त पोषण समझौते को आकार देना होगा। उन्होंने आगाह किया कि जलवायु परिवर्तन के अग्रिम मोर्चे पर चुनौतियों से जूझ रहे देशों के लिए ये जरूरी है और इस मुद्दे पर विफलता कोई विकल्प नहीं है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ये जरूरी है कि उसके दुष्प्रभावों का सामना कर रहे देशों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाए। अनेक देश बाढ़, तूफान, वनों में आग, सूखे और अन्य चरम मौसम घटनाओं की मार झेल रहे हैं और इससे होने वाली क्षति नुकसान से उबरने के लिए उन्हें वित्तीय संसाधनों की जरूरत है। साथ ही स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को अपनाने के लिए भी वित्तीय मदद आवश्यक है। मगर जलवायु सम्मेलन में ये एक ऐसा मुद्दा भी है जिस पर खींचतान हो रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जोर देकर कहा कि विकासशील देशों के लिए संसाधनों को मुहैया कराया जाना और एक वित्तीय पैकेज की व्यवस्था करना जरूरी है ताकि वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जा सके।
Never forget what it is at stake. This is a COP to deliver justice in the face of climate catastrophe. To help move us closer to secure a decent world for all humanity.
महासचिव गुटेरेस कह रहे थे कि ये कभी नहीं भूलना होगा कि दांव पर क्या लगा हुआ है। ये कॉप सम्मेलन जलवायु बर्बादी के समक्ष न्याय को सुनिश्चित करने का एक अवसर है ताकि हम पूरी मानवता के लिए बेहतर दुनिया को हासिल कर सकें। महासचिव गुटेरेस ने आपदाओं का सामना करने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भी बल दिया जिसके लिए सहायता धनराशि का प्रबंध किया जाना होगा।
म्यांमार में मानवीय संकट एक बेहद गंभीर पड़ाव पर पहुंच गया है और हिंसक टकराव में आई तेजी के अलावा जलवायु प्रभावों से बच्चे और उनके परिवारों के लिए एक अभूतपूर्व जोखिम पैदा हो रहा है। इसके मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने बच्चों की रक्षा किए जाने और उनके स्वास्थ्य कल्याण पर पर्याप्त ध्यान देने का आग्रह किया। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं अंशु शर्मा।
यूनिसेफ के उप कार्यकारी निदेशक टेड चायबान ने गुरुवार को जारी अपने एक वक्तव्य में बताया कि देश भर में 34 लाख लोग विस्थापित हुए हैं, जिनमें 40% से अधिक बच्चे हैं। इस वर्ष अब तक हुई हिंसक घटनाओं में कम से कम 650 बच्चों की या तो मौत हुई है या फिर वो अपंग हो गए हैं। बारूदी सुरंगों और युद्ध के विस्फोटक अवशेषों की चपेट में आने से 1000 से अधिक आम नागरिक हताहत हुए हैं, जिनमें 32% बच्चे हैं। उन्होंने हाल ही में हिंसक टकराव से प्रभावित इलाकों की यात्रा के दौरान हिंसा व चक्रवाती तूफान जैसी आपदाओं से बच्चों पर होने वाले असर को प्रत्यक्ष तौर पर देखा। तूफान के कारण बड़े पैमाने पर बाढ़ आई, जिससे 10 लाख से अधिक लोगों पर असर हुआ है। यूनिसेफ के वरिष्ठ अधिकारी ने 15 नवंबर को काचीन के एक चर्च परिसर पर हुए हमले की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया, जिसमें 7 बच्चों समेत 9 लोग मारे गए थे। नागरिक इलाकों में जानलेवा हथियारों का ज्यादा इस्तेमाल किए जाने और घरों, अस्पतालों व स्कूलों को निशाना बनाए जाने पर गहरी चिंता जताई गई है।
भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने 22 नवंबर को यूएन मुख्यालय में हिंदी दिवस मनाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस हिंदी दिवस के लिए कुछ प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई थी, जिनमें महिला सशक्तिकरण पर निबंध, हिंदी के महत्व पर कविता, गीत या भजन गायन और भारत की सभ्यता पर ज्ञान प्रतियोगिता क्विज शामिल थे। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
निबंध लेखन में अनुषा वंगानू को प्रथम स्थान मिला है, कविता में प्रथम स्थान डॉक्टर योगिता मोदी को प्राप्त हुआ है और गीत व भजन गायन में प्रथम स्थान अपूर्वा श्रीवास्तव ने हासिल किया है। संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग में न्यूज और मीडिया डिवीजन के डायरेक्टर इयन फिलिप्स ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हिंदी की महत्ता पर प्रकाश डाला।
हिंदी ग्लोबल रीच इज ट्रूली इम्प्रेसिव, ओवर 600 मिलियन स्पीकर्स वर्ल्ड वाइड, मेकिंग इट द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड।
इयन फिलिप्स कह रहे थे कि हिंदी की वैश्विक पहुंच वाकई बहुत शानदार है। दुनिया भर में 60 करोड़ से अधिक लोग हिंदी को सबसे अधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा बनाए हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी सबसे पहले वर्ष 1949 में महासभा में बोली गई थी। दुनिया के सबसे बड़े फिल्म उद्योग बॉलीवुड ने हिंदी और भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में फैलाने में असाधारण भूमिका निभाई है। संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग में न्यूज और मीडिया डिवीजन के डायरेक्टर इयन फिलिप्स के शब्द। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हिंदी की विरासत और महत्ता को रेखांकित किया।
हिंदी दिवस के अवसर पर बोलना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। यह दिन हिंदी भाषा और हमारे राष्ट्रीय जीवन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका का उत्सव है। इस वर्ष का हिंदी दिवस और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा और राजभाषा के रूप में अपनाए जाने का 75वां वर्ष है और हम आज संयुक्त राष्ट्र में इसका महत्व पर प्रकाश डाल रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश के शब्द। इस कार्यक्रम में गुयाना, सुरीनाम, नेपाल सहित अनेक देशों के राजदूतों ने दुनिया भर में हिंदी के प्रयोग और अहमियत को रेखांकित किया। विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए गए।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। इटली के नेपल शहर स्थित फेडरिक द्वितीय विश्वविद्यालय के दंत चिकित्सा विभाग के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को संत पापा फ्रांसिस का साक्षात्कार कर उनका संदेश सुना। संदेश में संत पापा ने कहा, नेपल्स विश्वविद्यालय की स्थापना की 800वीं वर्षगांठ मनाने पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देते हुए खुश हूं। यह शैक्षणिक संस्थान अभी भी स्वाभियाई सम्राट फेडरिक द्वितीय के नाम से जारी है, जिन्होंने नेपल शहर में प्रथम स्टूडियम जेनेराले अर्थात सामान्य अध्ययन की आधारशिला रखकर विश्व के सर्वाधिक प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक की संस्थापना की थी। दंत चिकित्सा विभाग के छात्र डॉक्टरों और प्राध्यापकों से संत पापा ने कहा, आप जो वर्षगांठ मना रहे हैं, मैं विशेष रूप से आप डॉक्टरों को उस शानदार नैदानिक परंपरा को याद करने के लिए आमंत्रित करती है जिसके आप उत्तराधिकारी हैं और जिसे विश्वविद्यालय के आदर्श वाक्य में अच्छी तरह से संक्षेपित किया गया है, जो ग्रीक हिपोक्रेट्स के पाठ को लैटिन स्क्रिबोनियस के अधिकार से जोड़ता है। पहला नुकसान न पहुंचाना, दूसरा सावधान रहना, तीसरा उपचार करना। सबसे पहले कोई नुकसान न पहुंचाना, फिर देखभाल करना और फिर ठीक करना। संत पापा ने कहा कि यह एक उत्तम कार्यक्रम है जो सदैव समसामयिक रहता है। उन्होंने कहा, नुकसान न पहुंचाएं यह अनुस्मारक अनावश्यक लग सकता है, लेकिन इसके बजाय यह एक स्वस्थ यथार्थवाद का अनुपालन है। सबसे पहले तो यह रोगी की पीड़ा को और अधिक न बढ़ाने के बारे में है। फिर ध्यान रखें, एक सर्वोत्कृष्ट सुसमाचार प्रचार कार्य है जो भले समारी के सदृश है, लेकिन इस कार्य को ईश्वर की शैली के साथ किया जाना आवश्यक है, जो है निकटता, करुणा और कोमलता। इसके अलावा चिकित्सक यह भी ध्यान में रखें कि अखंड व्यक्ति का इलाज किया जाता है, न कि केवल एक हिस्से का। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों का अंतिम लक्ष्य चंगाई प्रदान करना होता है, जिसमें चिकित्सक वह काम करते हैं जो स्वयं प्रभु येसु ख्रीस्त ने किया था। इसमें वे येसु ख्रीस्त के समान हो सकते हैं जिन्होंने लोगों की सभी प्रकार की बीमारियों और दुर्बलताओं को ठीक किया। कैथलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा पुस्तक का उल्लेख कर दंत चिकित्सकों से संत पापा ने कहा कि आप उन लोगों के प्रति किए गए अच्छे काम से खुश रहें जो पीड़ित हैं। संत पापा ने कहा, शास्त्रीय ज्ञान आज तीव्र गति से विकसित हो रही तकनीकी से मिलता है, जिसे कभी भी नैतिकता के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। परम धर्म पीठ के लिए बोलिविया, क्यूबा और वेनेजुएला के दूतावासों द्वारा रोम स्थित संत कलिस्तो प्रासाद में एक कार्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ गुरुवार को संत पापा फ्रांसिस के संदेश से हुआ। संदेश में संत पापा ने विश्व के दक्षिणी गोलार्ध के हित के लिए सृष्टि में जो कुछ है उसके साथ संबंध बनाने के लिए आमंत्रित किया। संत पापा ने सचेत किया कि जलवायु परिवर्तन के संकेतों को छिपाया नहीं जा सकता, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की चरम घटनाएं सबसे अधिक गरीब देशों के लोगों को प्रभावित करती हैं। लाउदातो सी और लाउदाते देयुम लातिनी अमरीका के अनुभवों के प्रकाश में पर्यावरण संकट की समस्याओं का समाधान शीर्षक से गुरुवार को उक्त कार्य शिविर की शुरुआत हुई। इसमें भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को संत पापा ने आमंत्रित किया कि वे लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने और सृष्टि की संरचनाओं के साथ संबंध बनाने का प्रयास करें। 28 नवंबर को आरंभ उक्त कार्य शिविर में लातिनी अमेरिका के लिए गठित कमीशन के अध्यक्ष कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्त, पोंटिफिकल एकेडमी ऑफ साइंसेज के चांसलर कार्डिनल पीटर टर्कसन, जीवन संबंधी परम धर्म पीठीय अकादमी के अध्यक्ष मान्यवर विंचेंसो पालिया तथा परम धर्म पीठीय संचार विभाग के प्रीफेक्ट पाओलो रुफिनी ने भाग लिया। कार्डिनल प्रेवोस्त ने प्रतिभागियों का अभिवादन करते हुए बिगड़ते पर्यावरणीय संकट के सामने कार्य की ओर बढ़ने की तात्कालिकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि यह एक महान चुनौती है जिसके लिए कलीसिया की धर्म शिक्षा में निहित प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, जो इस बात पर बल देती है कि ईश्वर द्वारा मनुष्य को सौंपी गई प्रकृति पर प्रभुत्व को निरंकुश नहीं होना चाहिए। जयंती वर्ष 2025 की असाधारण घटना के मद्देनजर वेटिकन स्थित परम धर्म पीठीय प्रेरितिक लाइब्रेरी की पहलों को गुरुवार को परम धर्म पीठीय प्रेस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। कहा गया कि ओजाका एक्सपो और जेड्डा में इस्लामिक कला की द्विवार्षिक प्रदर्शनी जैसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सम्मेलनों और भागीदारी के साथ वेटिकन लाइब्रेरी एक नवीन मानवतावाद और संवाद के विकास हेतु परियोजनाओं और पहलों की निरंतर प्रयोगशाला के रूप में स्वतः को पुष्ट करती है। जयंती वर्ष के कार्यक्रमों की प्रस्तावना में कहा गया कि यह पवित्र वर्ष विश्वास के साथ सांस्कृतिक कूटनीति की सामंजस्यपूर्ण भूमिका का जश्न मनाने, पुलों का निर्माण करने और संवाद को बढ़ावा देने का एक अनूठा अवसर है और वेटिकन लाइब्रेरी इसका प्रतिनिधित्व करती है, जो एक समग्र और अद्वितीय विरासत की संरक्षिका है तथा विभिन्न युगों और सभ्यताओं को गले लगाती है। पवित्र रोमी कैथलिक कलीसिया के पुरालेखपाल और लाइब्रेरियन महाधर्माध्यक्ष विंचेंसो जानी ने संवाददाताओं के समक्ष कुछ मुख्य पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि 2025 के लिए वेटिकन प्रेरितिक लाइब्रेरी खुद को परियोजना और पहलों की निरंतर प्रयोगशाला, अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकारों के साथ आदान प्रदान और चर्चा के लिए एक जीवंत स्थल के रूप में देखती है। रोम स्थित संत इजिडियो कैथलिक लोकधर्मी समुदाय द्वारा मृत्युदंड और न्याय पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया कि दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी उन देशों में रहती है जहां मौत की सजा अभी भी मौजूद है। सम्मेलन में राज्य स्वीकृत प्राण दंड की सजा के समापन का आह्वान किया गया। मृत्युदंड के मुद्दे पर वाद विवाद हेतु 28 नवंबर को रोम में न्याय मंत्रियों के अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का 14वां संस्करण आयोजित किया गया। 2005 के बाद से इस बैठक में दुनिया भर के मंत्रियों, कार्यकर्ताओं और संगठनों को न्याय के अभ्यास की विभिन्न प्रणालियों के बीच बातचीत और चर्चा के लिए जगह बनाने तथा मृत्युदंड पर रोक और उन्मूलन की प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए आमंत्रित किया जाता रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार 2022 तक विश्व के 55 राष्ट्रों में अभी भी मृत्युदंड की व्यवस्था है। और इसी के साथ वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।